नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पेड्रो डोमिंगोस की द मास्टर एल्गोरिदम मशीन लर्निंग पर लिखी गई लोकप्रिय वैचारिक पुस्तक है। इसका केंद्रीय प्रश्न अत्यंत महत्वाकांक्षी है। क्या एक ऐसा सार्वभौमिक लर्निंग एल्गोरिदम संभव है जो पर्याप्त डेटा से किसी भी क्षेत्र का ज्ञान सीख सके? डोमिंगोस इस विचार को केवल भविष्यवाणी के रूप में नहीं रखते, बल्कि मशीन लर्निंग की 5 प्रमुख बौद्धिक परंपराओं के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से जांचते हैं। पुस्तक बताती है कि खोज इंजन, सिफारिश प्रणालियां, विज्ञापन, चिकित्सा निदान और वैज्ञानिक अनुसंधान में सीखने वाले सिस्टम क्यों निर्णायक होते जा रहे हैं। लेखक का उद्देश्य पाठक को कोड लिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि डेटा से नियम, पैटर्न और अनुमान बनाने वाली मशीनें किस तर्क पर काम करती हैं। साथ ही पुस्तक ऐसे भविष्य की रूपरेखा रखती है जिसमें एल्गोरिदम व्यक्तिगत निर्णयों, संस्थाओं और बाजारों को गहराई से प्रभावित करेंगे। यह परिचयात्मक होने पर भी तकनीकी विचारों को गंभीरता से लेती है और अपने बड़े दावे की सीमाओं पर विचार करने का अवसर देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मशीन लर्निंग में प्रोग्राम लिखने के बजाय उदाहरणों से नियम सीखना। पुस्तक की बुनियादी स्पष्टता यह है कि पारंपरिक प्रोग्राम और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में अंतर क्या है। पारंपरिक प्रोग्राम में मनुष्य नियम बनाता है, कंप्यूटर उन नियमों पर इनपुट चलाकर परिणाम देता है, लेकिन चेहरा पहचानने, हस्तलिपि पढ़ने या वाहन चलाने जैसे कार्यों के लिए हर संभावित नियम पहले से लिखना व्यावहारिक नहीं है। मशीन लर्निंग में सिस्टम को इनपुट और अपेक्षित परिणामों के बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, फिर वह ऐसा मॉडल खोजता है जो नए उदाहरणों पर भी उपयोगी अनुमान लगा सके। डोमिंगोस इसी प्रक्रिया को एल्गोरिदम द्वारा एल्गोरिदम बनाने की तरह प्रस्तुत करते हैं। यह दृष्टि बताती है कि अधिक डिजिटल गतिविधि, सेंसर और ऑनलाइन व्यवहार के साथ डेटा क्यों मूल्यवान संसाधन बन गया है। फिर भी पुस्तक का निहित सबक यह नहीं कि डेटा अपने आप सत्य है। सीखने की प्रक्रिया उन उदाहरणों, चुनी हुई विशेषताओं और मान्यताओं से बंधी रहती है जिन पर मॉडल बनाया गया है। इसलिए किसी प्रणाली की भविष्यवाणी क्षमता को उसके उद्देश्य, प्रशिक्षण डेटा और गलती की लागत से अलग करके नहीं समझा जा सकता। यही आधार आगे 5 अलग अलग लर्निंग परंपराओं को समझने के लिए आवश्यक बनता है। दूसरा, 5 ट्राइब्स अलग अलग मान्यताओं से सीखने की समस्या को परिभाषित करती हैं। डोमिंगोस मशीन लर्निंग को 5 ट्राइब्स के ढांचे में व्यवस्थित करते हैं। सिंबोलिस्ट तर्क, नियम और इंडक्शन पर जोर देते हैं, इसलिए वे ज्ञान को स्पष्ट कथनों और संबंधों के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। कनेक्शनिस्ट न्यूरल नेटवर्कों से प्रेरणा लेते हैं और अनेक परतों के माध्यम से जटिल पैटर्न पकड़ने का प्रयास करते हैं। इवोल्यूशनरी तरीके प्राकृतिक चयन की तर्ज पर संभावित समाधानों को बदलते, परखते और बेहतर रूपों को आगे बढ़ाते हैं। बेयजियन अनिश्चितता को संभावना के रूप में लेते हैं और नए साक्ष्य के साथ विश्वास को अद्यतन करते हैं। एनालोजाइजर पुराने उदाहरणों से समानता खोज कर नए मामलों का निर्णय करते हैं, जैसे निकट उदाहरणों पर आधारित वर्गीकरण। यह वर्गीकरण केवल इतिहास का विवरण नहीं है। हर ट्राइब इस प्रश्न का अलग उत्तर देती है कि सीखना क्या है, ज्ञान किस रूप में रखा जाए और सामान्यकरण कैसे किया जाए। इसी कारण कोई एक विधि हर समस्या में सर्वोत्तम नहीं होती। नियम समझाने योग्य हो सकते हैं, लेकिन विशाल संयोजनात्मक स्थान में कठिन पड़ सकते हैं। नेटवर्क जटिल संकेतों में प्रभावी हो सकते हैं, पर उनकी व्याख्या कठिन हो सकती है। पुस्तक की विशेषता इन मतभेदों को प्रतिस्पर्धी तकनीकों की सूची नहीं, बल्कि ज्ञान के परस्पर पूरक सिद्धांतों के रूप में देखना है। तीसरा, मास्टर एल्गोरिदम का दावा सार्वभौमिक कंप्यूटेशन से आगे सार्वभौमिक सीखने की खोज है। मास्टर एल्गोरिदम पुस्तक का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद विचार है। डोमिंगोस का अनुमान है कि जिस तरह एक सार्वभौमिक कंप्यूटर अलग अलग गणनाएं चला सकता है, उसी तरह एक सार्वभौमिक लर्निंग प्रणाली पर्याप्त डेटा और उपयुक्त प्रारंभिक मान्यताओं से विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। इसका अर्थ किसी जादुई बटन से हर प्रश्न का उत्तर मिलना नहीं है। सीखने वाले सिस्टम को फिर भी डेटा, प्रतिनिधित्व, लक्ष्य और गणनात्मक संसाधनों की जरूरत होगी। पुस्तक का तर्क यह है कि 5 ट्राइब्स की शक्तियां अंततः एकीकृत की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, तर्क की संरचना, संभाव्यता के साथ अनिश्चितता, न्यूरल प्रतिनिधित्वों की पैटर्न क्षमता, विकासवादी खोज और उदाहरण आधारित समानता अलग अलग कमियों को भर सकते हैं। इस परिकल्पना का महत्व इसलिए है कि यह मशीन लर्निंग को अलग अलग औजारों के संग्रह के बजाय ज्ञान खोजने की सामान्य प्रक्रिया मानती है। पर पुस्तक पढ़ते समय इस दावे को स्थापित तथ्य नहीं, अनुसंधान का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समझना उचित है। अलग विधियों को जोड़ने में पैमाने, विश्वसनीयता, कारणात्मक समझ और व्याख्येयता जैसी कठिन चुनौतियां बनी रहती हैं। डोमिंगोस की दृष्टि बहस को प्रेरित करती है, अंतिम समाधान प्रस्तुत नहीं करती। चौथा, डेटा से बनी व्यक्तिगत प्रतिकृति सुविधा के साथ स्वायत्तता और निजता का प्रश्न उठाती है। पुस्तक भविष्य की एक प्रभावशाली संभावना पर विचार करती है। किसी व्यक्ति के डिजिटल व्यवहार से बना ऐसा मॉडल जो उसकी पसंद, प्राथमिकताओं और निर्णयों को सीख सके। ईमेल, खोज, खरीदारी, स्थान, संपर्क और अन्य डिजिटल निशान किसी सिस्टम को व्यक्ति की ओर से सीमित काम करने योग्य बना सकते हैं। ऐसा सहायक यात्रा की योजना, सूचनाओं की छंटाई, सुझाव या नियमित प्रशासनिक कार्यों में सुविधा दे सकता है। डोमिंगोस इस संभावना के माध्यम से दिखाते हैं कि मशीन लर्निंग केवल उद्योगों की पृष्ठभूमि में काम करने वाली तकनीक नहीं रहेगी, बल्कि निजी जीवन के निर्णय ढांचे में प्रवेश करेगी। पर इसी उदाहरण में शक्ति का असंतुलन भी छिपा है। जो संस्था डेटा एकत्र करती है, वह व्यक्ति के बारे में सूक्ष्म अनुमान लगा सकती है, जबकि व्यक्ति अक्सर यह नहीं जानता कि कौन से संकेत दर्ज हुए और उनका उपयोग किस निर्णय में हुआ। गलत डेटा, पक्षपाती ऐतिहासिक रिकॉर्ड या गलत उद्देश्य से प्रशिक्षित मॉडल व्यक्ति के अवसरों और विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पुस्तक से निकलने वाला व्यावहारिक प्रश्न यह है कि सुविधा के बदले कितना डेटा देना उचित है। उपयोगकर्ता की सहमति, डेटा पर नियंत्रण, निर्णय की पारदर्शिता और अपील की व्यवस्था सीखने वाली प्रणालियों के सामाजिक उपयोग के आवश्यक हिस्से हैं। अंत में, स्वचालित ज्ञान खोज विज्ञान, व्यवसाय और काम की प्रकृति को बदल सकती है। डोमिंगोस मशीन लर्निंग को ऐसी सामान्य प्रयोजन क्षमता मानते हैं जो अनेक क्षेत्रों में पैटर्न खोज और पूर्वानुमान की गति बढ़ा सकती है। ऑनलाइन सेवाओं में इसका परिचित रूप खोज परिणाम, उत्पाद या फिल्म सुझाव और विज्ञापन लक्ष्यीकरण है, लेकिन पुस्तक का दायरा इन उदाहरणों से व्यापक है। चिकित्सा में डेटा से निदान सहायता, विज्ञान में परिकल्पना निर्माण और प्रयोगों का विश्लेषण तथा व्यवसाय में मांग और जोखिम का अनुमान, सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीखने वाले मॉडल उपयोगी हो सकते हैं। मुख्य परिवर्तन यह है कि ज्ञान उत्पादन के कुछ हिस्से स्वचालित हो सकते हैं। मशीन विशाल डेटा में सहसंबंध खोज सकती है जिन्हें मनुष्य आसानी से नहीं देख पाता। फिर भी सहसंबंध को कारण समझ लेना एक गंभीर भूल हो सकती है। उपयोगी वैज्ञानिक या नीतिगत निर्णय के लिए विषय विशेषज्ञता, मापन की गुणवत्ता और वास्तविक दुनिया में परीक्षण आवश्यक रहते हैं। काम के संदर्भ में पुस्तक का संकेत है कि कई नियमित विश्लेषणात्मक कार्यों का स्वरूप बदलेगा, केवल हाथ से किए जाने वाले काम नहीं। इसका अर्थ अनिवार्य रूप से मनुष्यों का प्रासंगिक होना नहीं, बल्कि मानवीय निर्णय और मशीन की पैटर्न क्षमता के नए संयोजन की आवश्यकता है। लाभ किसे मिलेगा और गलती का दायित्व कौन लेगा? ये प्रश्न तकनीकी प्रगति के साथ संस्थागत उत्तर भी मांगते हैं। निष्कर्ष में, द मास्टर एल्गोरिदम उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI और मशीन लर्निंग की चर्चा को केवल उत्पादों, चैटबॉटों या भविष्य की सनसनीखेज भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं रखना चाहते। तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी, नीति और व्यवसाय से जुड़े निर्णयकर्ता तथा डेटा आधारित प्रणालियों के सामाजिक प्रभाव में रुचि रखने वाले सामान्य पाठक इससे एक व्यवस्थित वैचारिक आधार पा सकते हैं। प्रोग्रामिंग अनुभव न होने पर भी पुस्तक का मुख्य तर्क समझा जा सकता है, हालांकि कुछ हिस्सों में ध्यान और बुनियादी तकनीकी जिज्ञासा अपेक्षित है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक अलग अलग मॉडल नामों को याद करने के बजाय उनके पीछे की सीखने की मान्यताओं को पहचानना सीखता है। इससे किसी AI दावे का मूल्यांकन करते समय डेटा, प्रतिनिधित्व, अनिश्चितता, सामान्यीकरण और सीमाओं पर बेहतर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विषय की कई लोकप्रिय पुस्तकों से यह इसलिए अलग है कि यह केवल न्यूरल नेटवर्क या हाल की तकनीकी उपलब्धियों पर केंद्रित नहीं रहती। 5 ट्राइब्स का ढांचा मशीन लर्निंग के बौद्धिक इतिहास और वर्तमान विविधता को एक साथ रखता है। मास्टर एल्गोरिदम का विचार पुस्तक को एक एकीकृत दूरदर्शी दिशा देता है। फिर भी इसकी सबसे उपयोगी पढ़ाई आलोचनात्मक होगी। सार्वभौमिक सीखने की संभावना प्रेरक है, पर डेटा की गुणवत्ता, पक्षपात, निजता, व्याख्येयता और मानव जवाबदेही की समस्याएं स्वतः समाप्त नहीं होती। यही तनाव इसे तकनीकी परिचय के साथ विचारपूर्ण बहस की पुस्तक बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पेड्रो डोमिंगोस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।